थे, कहीं लड़ाई देखा पांच पांडवों में? ऐसा नहीं होना चाहिए। खूब शांति के साथ में भजन करना चाहिए। कैसे, अब इसको बतलाता हूं। महाभारत का युद्ध हुआ, इसी में वर्णन किया गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, दोनों तरफ से सब लोग मारे गए, विदुर भी धृतराष्ट्र इत्यादि को लेकर के चले गए। अब पांचों पांडवों को बड़ी ग्लानी हो रही है कि हमने राज्य भोग के लिए ये सब लोगों को मारा मरवाया, अब लोग आत्महत्या करेंगे। कृष्ण ने कहा कि भाई ऐसा मत करो, चलो भीष्म पितामह के यहां ज्ञान तुमको दिलाया। भीष्म पितामह के यहां सब लोग गए, द्रौपदी भी गई। उस समय में सरसा ज्ञापक थे, उत्तरायण की राह देख रहे थे। वैष्णव के लिए उत्तरायण और दक्षिणायन का कोई भी बात नहीं है, वो तो स्मार्ट लोगों के लिए ये विधान। तो वो उत्तरायण के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में कृष्ण, अर्जुन, भीम सब पांचों भाई द्रौपदी वहां पर आए, और भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि नारद पराशर सू और जो जितने हैं बस ओ व्यास इत्यादि भी सभी आए सुनने के लिए ये क्या बातें हो रही है। उस समय में जब चार सब गए तो कृष्ण ने अपने आंखें के इशारे से कृष्ण को प्रणाम किया और उनको अपने सिरहाने बैठने के लिए आदेश दिया। और पांचों पांडवों को उन्होंने आदेश दिया, उनके पैर जिधर में रखे हैं उधर में बैठने के लिए, क्यों पैर की तरफ में रहने से आंखों से दिखाई देगा। और कृष्ण को अपने सिरहाने के तरफ में इसलिए बैठाया कि वो पैर की तरफ बैठने से उनके पैर धर्म हो जाएंगे, ये उचित नहीं, उनको मर्यादा देने के लिए।
और कृष्ण ने बात को छेड़ करके कहा, ये तो बड़े दुखी हैं, उनके वजह से ये कितना 1800 लोग मारे गए हैं, इनका पाप इन पर पड़ गया है, इसलिए भाई ये दुखी हैं। आखिर को कुछ है, उन्होंने कहा आप तो कहीं भगवान आश्रम नहीं आ सकते थे, हमारे पास में चला है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे समझा में से नहीं समझे में तुम समझाओ। जब समझा में गए तो द्रौपदी
ये बात होकर, इसलिए यदि भजन करना है तो विषयी लोगों की का अन्न इत्यादि मत खाएं। तो अब कह रहे हैं, तो अब कह रहे हैं हमारे हृदय में शरीर में जितना जो कुछ अन्न का खाया हुआ रस था, जो रक्त के रूप में मद्दा और मेज के रूप में अभी तक था, वो धीरे 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 या तो इनसे निकल गया है, घावों से बाणों के छिद्र से जो रहा सहा वो भी सूख गया, खत्म हो गया। आज उपवास किए हुए में भी कितने दिन हो गए, इसलिए बुद्धि अभी कुछ कुछ ठीक हुई है, पूरी नहीं, क्योंकि अभी तो शरीर उसी का बना हुआ है, इसलिए पूरी नहीं, इसलिए कुछ कुछ सिद्ध हुआ है, इसलिए मैं कुछ उपदेश दे रहा हूँ। उनको बतलाने लगे, एक बुढ़िया थी, एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण मर गया, बुढ़िया रह गई, कोई एक छोटा सा बच्चा था, उसके घर द्वार बिक गए, जंगल में एक कुटी बना करके रहने लगी बच्चे के साथ, और किसी प्रकार से जीवन निर्वाह कर रही थी, क्योंकि धार्मिक थी इसलिए प्रतिदिन ठाकुर जी की पूजा करती थी। एक दिन छोटा सा बच्चा पास ही के बगीचे में अंधकार में पुष्प चयन करने के लिए गया, चयन करके ला रहा था, इतने में एक काले सर्प ने उसको काट दिया, साथ ही साथ में विष चढ़ गया, वो मर गया। मरने के साथ ही साथ में एक बहेलिया जा रहा था, उसने मंत्र के द्वारा सांप को वशीभूत करके और घड़े में डाल दिया और उसको ढक दिया, उसको कंधे पर ले लिया और मरे हुए बच्चे को दूसरे कंधे पर ले लिया और लेकर के बूढ़ी के पास में, बूढ़ी मैया मैया ये देखो क्या हो गया, ये क्या विडंबना, तुम्हारा लड़का मर गया, वो फूल चुन रहा था, इस दुष्ट सर्प ने उसे काट दिया, मैं उस सांप को भी ले आया हूं। बूढ़ी ने देखा उसका लड़का मर गया है, एकदम काला हो गया, उसको रख दिया नीचे जमीन पर और बूढ़ी रोने लगी, सिर पीटने लगी, पेट पीटने लगी, अब मैं रह करके क्या करूंगी, पहले ही मर जाती। बहलिए ने कुछ रोने और शांत होने पर बोला, जा मैया मैं इस सांप को बोटी बोटी काटकर तुम्हारे सामने जला देता हूं, फिर दूसरे को नहीं काटेगा। तो जब बेटा दो चार बार कहा उसने, अच्छा बेटा तुमने बोटी बोटी जो काट देगा हमारा बच्चा जीवित तो उठेगा, आ तो नहीं तो फिर इसको क्यों काटता है, इसको छोड़ दो जाने, अजय छोड़ दो, ये दूसरे को काटेगा फिर तीसरे को काटेगा, मैं नहीं छोड़ सकता। बस बूढ़ी के मना करने पर भी बूढ़ी तो शांत हो गई, अब हमारा लड़का फिरने वाला नहीं है, उस लड़के का प्रवाह इत्यादि कराएगी और करा करके अपना भगवत भजन करेगी निश्चिंत। किंतु ये दुष्ट, ये तो शूद्र है ना, शरीर के लिए शो करते हैं, बस उसने सांप को निकाला और मारने की तैयारी। सांप ने कहा मुझे क्यों मारता है, मेरा क्या दोष, अ तो तैने उसको काटा, मैंने तो काटा नहीं, हमको काल ने कहा जे इसको काटो इसलिए मैंने काटा, इसका काल आ गया था। सभी लोग अपने अपने काल के अनुसार में मरते हैं, इसलिए कोई निमित्त होता है, इसलिए मैं निमित्त केवल था, यथार्थ में इसको मारने वाला तो काल है। इतने में काल दौड़ करके आ गया, अरे मूर्ख मेरा क्या दोष, मैंने तुमको थोड़े ही युक्त किया है, इसका कर्म ही काल हुआ है, पूर्व जन्म में ऐसे ही इसने दूसरे को मारा था, अब वो दूसरा हो गया सांप और ये हो गया बच्चा और उसी का ये बदला ले रहा है ना, टीट फाट टैट ऐसा हो, जैसा कर्म करेंगे उसका फल भी भोगना पड़ेगा, इसलिए ये बच्चा अपने को ही अपने मारा है, इसमें दूसरे का किसी का दोष नहीं। इसी तरह से महाराज युधिष्ठिर, ये कौरव लोग अपने आप मरे हैं, आपकी सेनाओं के लोग अपने आप मरे हैं, आपके लिए नहीं मरे हैं, ये काल इनका हुआ, काल माने क्या, अपने कर्मों का फल। एक आदमी गाली दे रहा है, समझो अच्छी तरह से, यदि भजन करना है तो जो गाली दे रहा है उसको या मार रहा है उसके प्रति तुम मत कुछ सोचो, ये सोचो जो हमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं इसलिए वो ऐसा कर रहा है, हमको आगे से ऐसा कर्म नहीं करना है जो हमको कोई तंग कर सके, ये यदि भावना आएगी तो भजन होगा। तत्तेनुकंपम सुसुमिक्षमाणो भोंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग बपुभि विद्धन नमस्ते जीवित सर मुक्ति। आदमी के ऊपर जो क्लेश आते हैं, आदमी विचलित हो उठता है, धीर पुरुष बुद्धिमान पुरुष भजन करने वाला ये समझता है ये हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए थे वही फल आ रहे हैं, इसको हंस करके भोगे या रो करके भोगे, भोगना पड़े, रो करके क्यों भोगे, हंस करके भोगे, और नए कर्म जो होंगे वो अच्छे कर्म करूंगा जिससे कि उसके अच्छे फल हो और भगवान का भजन करेंगे। और शुद्ध भगवत भक्त लोग क्या सोचते हैं, हमने जीवन में एक बार भी तो नामाभास किया होगा या कर रहा होगा, जरूर समस्त हमारे पूर्व जन्म के पाप सब एक नामाभास से दूर हो जाते हैं। संकेत्यं पारहस्यं स्तौभमहेलनमेव वार क्या है, अशेषाद्धर्म वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाद्धर्म, अशेष रूप में जितने पाप हैं उस नाम के द्वारा शेष हो जाते हैं। हमने भी ऐसे नाम जरूर किया है और करूंगा जिससे कि हमारे पाप सब ध्वंस हो जाएंगे, भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, इसलिए पाप तो नहीं है, फिर कैसे उनका जो सुख दुख है उनके कर्म फल तो समाप्त हो गए हैं, तो शरीर भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उनके कर्म फल की वैसे ही रचना करके यह आगे भगवान का भजन कर सकता है, इसलिए सुयोग देने के लिए उसकी आयु को बढ़ा देते हैं जैसे ये करें। इसलिए प्रहलाद महाराज के ऊपर में जो दुख आया था वो कर्म फल नहीं है, द्रौपदी के ऊपर में जो दुख आया ये कर्म फल नहीं है, अम्बरीश महाराज के ऊपर में जो दुख आया ये कर्म फल नहीं है, मीराबाई के ऊपर में जो दुख आया ये दुख नहीं है, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया ये दुख दुख नहीं है, ये भगवान ने ऐसे कर्म के बना करके जगत को शिक्षा दी है। इसी स्थिति में भी, मरने की स्थिति में भी, इतना क्लेश पा करके भी कैसे स्थिर होकर के भजन करते हैं। इसलिए हम लोग भी जितना भी दुख संसार में आए उसे घबराना नहीं चाहिए, स्थिर होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे भी नहीं बनता है तो बुला लो सबको, कृष्णदास को बुलाओ, हमारे वो नन्नू मल है, दामोदर जी हैं, उसका नाम तो याद नहीं, बक्रेश्वर जी हैं, सबको बुलाओ, और मृदंग और खोल करताल अभी लगाओ तो एक दे दो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
मति सची पुत्र मात्र स्वरूपम रूपम तस्या गजौरीपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधुवासम प्राप्तो जस्य प्रथित कृपयासि गुरुं तं यतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।
जो जो आदमी
वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं।
तवैवास्मि तवैवास्मि न जिगामि त्वयारुणे इति विज्ञाय राधे तं
भगवत कृपा से
कल और आज सवेरे निर्विघ्न श्रीमद्भागवत संपन्न हुआ। कल हम लोगों ने प्रथम स्कंद की लीला संक्षेप में समाप्त की, उसके महात्म बतलाए। सवेरे द्वितीय स्कंद की लीला बतलाई। श्रीमद्भागवत के जो 10 लक्षण बतलाए गए वो तो विद्वानों के लिए है, साधारण लोगों के लिए नहीं। ये तो उसमें सर्ग विसर्ग एक तरह से आया, सर्ग में कुछ बतलाया। अभी तृतीय स्कंद भी आरंभ हो गया है। सवेरे तृतीय स्कंद में कुछ बतलाया गया, अभी तो दशम स्कंद नहीं आया, किंतु तृतीय स्कंद में हम देखते हैं कि कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन उसमें आ गया। करीब करीब उसमें जन्म लीला से लेकर और दशम स्कंद के द्वारका लीला तक सभी लीलाओं का सूत्र उसमें भर दिया। इसी तरह से कोई किसी किसी का कहना है कि श्रीमद्भागवत में कहीं भी राधा जी के नाम का उल्लेख नहीं है और कृष्ण के लीलाओं का केवल दशम स्कंद में ही वर्णन है और जगह नहीं है। व्यास जी ने इस तरह का एक श्लोक भी लिखा है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है। किंतु मालूम होता है कथा इमास्ते, याद है, कथिता मही असाम विताय लोके परेशान विज्ञान वैराग्य विवेक्षया विभो। इस श्लोक का ये तात्पर्य है साधारण रूप में कि इसमें हमने बड़े बड़े राजपुरुषों के चरित्र लिखे हैं, बड़े बड़े राजपुरुषों का, जैसे पृथु महाराज, ऋषभ देव, भरत महाराज, सूर्य वंश के, चंद्र वंश के बड़े बड़े नरेशों का, जदू इत्यादि का हमने नाम उल्लेख किया है, महाराज हरिश्चंद्र का भी उल्लेख किया है, दशरथ इत्यादि का भी नाम हमने उल्लेख किया। इसमें सभी परमार्थ नहीं है, ये तो ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि के लिए उदाहरण देने के लिए है। वचोर विभूति न तो पारमार्थ, ये बाक विभूति है। बाक विभूति माने क्या है? ये घोड़ा जो जा रहा है ये आकाश में उड़ रहा है। अरे घोड़ा कहीं आकाश में उड़ता है, ये तो बाक विभूति है। आकाश में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, ये तो बाक विभूति है। न तो पारमार्थ, पारमार्थ इसमें नहीं है, केवल ज्ञान वैराग्य की शिक्षा के। और दशम स्कंद के लिए पीछे से ये लिखा है, इसमें रस भरा पड़ा है। यदि कोई व्यक्ति भव सागर से पार करके अनंत काल के लिए बैकुंठ और उसके ऊपर गोलोक वृंदावन में भगवान के चरणों का रसास्वादन यदि लाभ करना चाहता है, दशम स्कंद के लीलाओं के कथाओं का नित्य श्रवण, चिंतन और मनन करें। ये संक्षेप में बतला है। किंतु हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और जो टीकाकार हैं सनातन गोस्वामी इत्यादि, उन्होंने कहा जैसे इस श्लोक के दूसरे श्लोक में ही, प्रथम अध्याय में ही ये लिखा गया, निगम कल्प तरुगलितम फलम सुखमुखादम द्रोसंजुतम पियोत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावुका। ये क्या चीज है? श्रीमद्भागवतम निगम कल्प तरूर फलम। निगम माने होता है वेद उपनिषद, जितनी भी श्रुतियां हैं उनको निगम कहते हैं। निगम माने एक निगम की स्थापना हुई है, माने क्या?
वो निगम से समझो, निगम कहते हैं एक तरह से अर्थ इत्यादि के लिए भी इसका प्रयोग होता है, निगम आगम कहते हैं। तो श्रुति और स्मृतियां ये सब निगम और आगम है, ये वृक्ष हैं। उपनिषद इत्यादि इसकी शाखाएं हैं, गोपाल तापनी इत्यादि इसके पत्ते इत्यादि हैं। गोपाल तापनी है और उपनिषद सब हैं, ये सब पत्ते हैं और उसमें फल लग गया। वो फल क्या है? नौवें स्कंद तक भागवत और दसवें स्कंद क्या है? वही पका फल हो गया। और इसमें गुठली नहीं है और उसमें रेशे जो दांत में लग जाते हैं वो नहीं है, न छिलके हैं, उसमें फेंकने लायक कोई चीज नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितंग फलम सुख मुखाद अम्र द्रव संजुत। ये गोलोक वृंदावन से आ रहा था, गिर रहा था, तो इतने दूर से गिरा और फट करके रस इधर उधर क्यों नहीं चला गया? इसलिए नहीं चला गया, हमारे गुरु परंपरा के माध्यम से वो आ रहा है वहां से। सुख जी कौन है? कल बतलाया था ना, वो तो गोलोक वृंदावन के ही हैं। उनको यदि बात भी दिया जाए तो ये कृष्ण स्वयं ये फल के देने वाले हैं। कृष्ण के चरण कमल रूपी वृक्ष की टहनियों पर ये लता फैली है, प्रेम की डालियां, और वहां से ये फल पकता है और गिरता है। जब वो गिरा तो ब्रह्मा जी ने उसे ले लिया अपने हाथों में, फिर उन्होंने छोड़ दिया तो वो आया नारद जी के हाथ। वहां से उन्होंने, वो खड़े हैं वहां से, गोलोक से लगी हुई है कतार लगी हुई है, वहां से वो दे रहे हैं, ऐसे लिया और इस हाथ से नीचे दे रहे हैं, वो नारद जी को दिया। नारद जी ने अपने दाहिने हाथ से लेकर के बाएं हाथ में रख करके नीचे व्यास जी को दिया। व्यास जी ने लिया और सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने सुख गोस्वामी को, और इस तरह से करते करते माधवेंद्रपुरी के पास में आया और माधवेंद्रपुरी जी ने ईश्वरपुरी जी को, ईश्वरपुरी ने महाप्रभु चैतन्य देव को दिया और चैतन्य देव ने देकर के रूप सनातन को दिया, स्वरूप दामोदर और इनको दिया। और उससे क्रमशः करते 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 अभी हम लोगों के गुरु जी के पास में ही आया। उन्होंने देखा जी ये सब कच्चे हैं, ये कच्चे हैं क्या करें, ये फल देख ही ना, विचार ही करते थे। तो अभी हम लोगों को अच्छा, अभी अभी तुम लोग छोटा है, अभी उत्तराधिकारी नहीं, अभी क्या उम्र नहीं हुई है बड़ी, क्या कर, नाबालिग, अभी नाबालिग हैं, अभी मत देखना ये जो है बक्सा मत खोलो, अभी खबरदार भागवत मत पढ़ना, वो कहते थे ना, क्यों कहते थे? ये अभी छोटे बच्चे हैं, नादान, नहीं समझे। जब बड़ा होना, ये नहीं कहा, वो तो समझेगा नहीं, इसलिए नहीं कहा जैसे बड़ा, तुम बड़ा होना तो इसको खोलना। कुछ तो बेटा क्या करेगा, जब बड़ा हो जाएगा 20 वर्ष का, 22 वर्ष का, 24 वर्ष का, देखा भाई घर में तो कुछ खाने के लिए है नहीं, पिताजी ने हमारे लिए कुछ छोड़ा कि नहीं। किशन भाई, तुम्हारे पिताजी तो बड़े धनी थे, तो उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। अरे पूरब की तरफ में खोदना कुछ, दक्षिण में मत खोदना, दक्षिण में खोदेगा तो क्या होगा, खड्डे भीमरूल ये इत्यादि निकलेंगे और तुम्हें काट देंगे। उत्तर में खोले गया तो यक्ष है, खा जाएगा, और पश्चिम में एक अजगर है, यदि खोदा काट देगा, पूरब में थोड़ी जगह पर खोदेगा। थोड़ा सा संधान मिला हम लोगों ने, थोड़ा सा अधिक नहीं, वो हम लोगों के लिए बहुत यथेष्ट हो गया। इस तरह से वो फूटा नहीं, जब तक सुखदेव गोस्वामी का है तब तक का इसमें वर्णन है, पीछे वाला वर्णन नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी जी वंदना करते हैं अपनी गुरु परंपरा के माध्यम से, इस फल की वंदना करते हैं। निगम कल्प तरोर गलितंग फलम, फल कैसा है? कच्चा नहीं, सूर्य के किरणों से तप कर एकदम पीला हो गया है, नरम हो गया है, आकाश में ही सुगंध से भरपूर हो गया है। सुख को कोई दे न दे, अपने लुब्ध हो करके वहां पर पहुंच गया, चोंच भिड़ा दी और उसमें सुंदर मधुर स्वाद था। इसमें तो गुठली और छिलका है नहीं, इसलिए कहते हैं रसिका भूभाव का है? क्या पिबत भागवतम रसमालयम भूभाव का, कहते हैं अरे ये तो रस से भरा पड़ा है, घर का कार्बाइड दे करके पकाया हुआ नहीं है। अभी आम केले अमरूद और जितने भी फल है आजकल कार्बाइड दे करके पकाए जाते हैं, उनमें कोई टेस्ट नहीं रहता, रस नहीं रहता। ये सूर्य की किरणों से पके हुए, सूर्य की किरणें ये विरह है, कृष्ण ही सूर्य वहाँ है और उनकी विरहों से ये पका हुआ ये मधुर सुंदर। कोई भी रेशा अंगूठे कुछ भी इसमें नहीं है, केवल रस ही रस वहाँ से आ रहा। नीचे गिरता तब तो फटता, एक के मुख से एकदम ऐसे ही चलता हुआ चला। इसको कहते हैं हे रसी के रसी, हे भावुक लोग, आप आलय तक इसका पान, आलय मैंने इस जगत में देहावसान होता है, आदमी मरते हैं, इतना इस जगत में मरते तक पढ़ो, या इसकी कथा मरते तक एक दिन भी मत छोड़ो, इसका निरंतर पान करो। ये साधारण लोगों के लिए, और रसिक और भावुक के लिए। रसिक कौन है? कृष्ण ही रस है, अखिल रसामृत सिंधु। इस रस को सबसे अधिक कौन पान करता है? ब्रज में गोपिया पान करता, उससे थोड़ा सा जो रह जाता है यशोदा मैया नंद बाबा बासल रस में पान करते हैं, उससे थोड़ा सा और छिटका हुआ सिदाम सुबल इत्यादि पीते हैं, उससे भी रह गया तो चित्र पितरक इत्यादि ये सब लोग पान, उनसे भी थोड़ा सा रह जाता है अत्यंत थोड़ा सा ने? तो वो लोग सनत सनंदन सनत कुमार समाधि में थोड़ा सा अनुभव करते हैं, पान नहीं करते अनुभव। ये ऐसा सुंदर रस, किंतु कहते हैं रसिक जन, रसिक कौन है? जो उनके अनुगत्य में भजन करते 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 अभी रागानुगा है, उनको कहा गया भावु, क्योंकि भावावस्था तक वो लोग हो सकते हैं। और रसिक कौन है? जिनकी वस्तु स्थिति हो गई है और वो लोग जदा कदाई संसार में घूमते हैं, जैसे नारद इत्यादि सहजी नहीं घूमेंगे, किंतु यदि कथा होती है ना और शुद्ध भक्त लोग यदि उस कथा को कहते हैं तो किसी न किसी रूप में ये हनुमान जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, नारद जी तो मान नहीं सकते, हो सकता है सुखदेव गोस्वामी भी अपना वेश बदल करके आ जाए, ये संभावना है। क्योंकि हम लोगों ने तुलसीकृत रामायण में पढ़ा, जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ होता है तो शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, देखो बड़े एक विचित्र बात बतलाऊं, गुप्त बात बतलाऊं, जिस समय रामचंद्र जी का जन्म होता है और बधाई के कीर्तन होने लगते हैं, दान इत्यादि होने, उस समय हम दोनों आदमी थे, मैं और काकभूषण जी, वेश बना करके मनुष्यों सा वेश बना लिया, कोई नहीं समझा, उस समय हम लोग थे। उसी तरह से जब खरी कथा होती है, अरे और की तो बात क्या, कृष्णचंद्र स्वयं रह नहीं सकते, अब जब राधा कृष्ण की कथाएं होंगी तो राधा और कृष्ण, राधा जी भी रह सकेंगी? ये लोग नहीं रह सकते, तो उनके भक्तों के रसिक की तो बात क्या, तो उन लोगों को रख दो रसिक। और भावुक में हमारे समझ से अभी जिनको अभी भाव उत्पन्न हुआ है, जैसे बिल मंगल इत्यादि हैं, ये भावुक हो सकते हैं, और नहीं तो यदि मुक्त प्रग्रह वृत्ति से यदि लिया जाए तो रसिक और भावुक दोनों एक हैं, जो भगवान के लीला रूपी रस का पान करने वाले जो ऐसे दुर्लभ महात्मा है उन सबके लिए ये दोनों का प्रयोग हो सकता है। इसलिए ये लोग कब तक पान करेंगे? जब तक कि हरि कथा सुनते 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 आंखों में आंसू बरसने लगे, तब तक तो सुनेंगे, गला रुद्ध हो जाए तब तक सुनेंगे, शरीर में पुलक रोमांच हो जाए तब तक सुनेंगे, किंतु प्रलय हो गया यदि, प्रलय मैंने मूर्छावस्था आ गई, तो उस समय तो गिर जाएंगे, समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इसलिए मूर्छा नहीं आने तक सुनो। कुछ कुछ अद्वैतवादी अर्थ करते हैं आलयम, आलयम माने क्या, हम जीव भी ब्रह्म हैं और एक घटाकाश है एक पटाकाश है। पटाकाश क्या है, एकदम संपूर्ण ये जितना आकाश है वो अखंड ब्रह्म, और उसमें हम जो जीव हैं ये घटाकाश की तरफ में हम लोग भी ब्रह्म हैं। माया के वजह से ये भी गलत, हम किसी प्रकार से अभी जीव जैसे दिखते हैं, किंतु जब ज्ञान होगा तो ज्ञान के द्वारा माया हट जाएगी और हम भी ब्रह्म में ब्रह्म मिल जाएंगे। जैसे समुद्र में एक बूंद पानी मिलने से वो भी समुद्र ही बन जाता है, ऐसे ही। किंतु यह सब उदाहरण बहुत गलत है, ऐसा कभी होता नहीं, आज तक कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं। समुद्र में इतना बड़ा समुद्र एक बूंद पानी दे दिया जाए तो वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जो मूर्ख है कहेंगे जो बढ़ा नहीं, वो जरूर बढ़ेगा, कमेगा नहीं। एक ग्लास पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें एक बूंद पानी दे दो क्या होगा, तो एक बूंद पानी गिर जाएगा, क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं है उसमें रखने की। उसी प्रकार से यदि जीव ब्रह्म में मिलेगा तो ये जीव पहले क्या था, ब्रह्म था ना जीव था, और क्यों ये अज्ञानी हुआ, माया नाम की तीसरी चीज कहां थी या अब कहां है, इन पर विचार करने से ऐसा मालूम पड़ता है भागवत में जो कुछ लिखा है यही परम सत्य है, वो सब सत्य नहीं है। इसलिए आलय का मतलब ये नहीं, जब तक कि ब्रह्म में लय नहीं हो जाते तब तक इस ग्रंथ का प्रसार साधन करो। रस, रस देखो, रस में एक आदमी रस रसिक है, वो रस का पान करता है, एक आदमी रस को बना करके देने वाला, एक आदमी पीने वाला, और पीता है रस को, रस को पी करके आस्वादन होता है। यदि रसिक न रहे केवल रस ही रस रहे, पहले तो ये प्रश्न होगा कि यह रस आया कहां से, कहां से आया, अपने आप कहां से आएगा, अरे भाई बनाया तो जाएगा ना रस, इसलिए रस की स्थिति नहीं बनती। मान लिया कि रस है और पीने वाला नहीं है तो रसास्वादन कौन करेगा, इसलिए ये तो बनता अर्थ नहीं है। ये आलय अर्थात तो ब्रह्म में, मैं ब्रह्म में जीव मिल गया, ब्रह्म बन गया, तब तक उस समय जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो। इसलिए अद्वैतवादी कहते हैं सीढ़ी की जरूरत है, कब तक जरूरत है, छत पर चढ़ जाओ, छत पर चढ़ जाओ, सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं, साधन करो, साधन की तब तक जरूरत है जब तक कि वो मिल नहीं जाए। गुरु की जरूरत कब तक है, जब तक कि वो साधन बतला रहे हैं, जब मैं ब्रह्म हो जाऊंगा तो गुरु की जरूरत क्या होगी, तो वो गुरु भी तो ब्रह्म है, अथवा एक गुरु ब्रह्म एक शिष्य ब्रह्म, वो दोनों एक को कैसे उपदेश देंगे। इसलिए यह सब बातें गलत है। इसलिए रस की स्थिति संपूर्ण है, राधा जी हैं रसिक, कृष्ण जी हैं रसिक, और राधा जी हैं रसिका, और दोनों में उनका जो प्रेम है यह है रस, उसको भक्त लोग छक छक करके पान करते हैं, उन्हीं की लीला ही यह रस है, और भक्त लोग भावुक लोग रसिक भक्त लोग इसका आलय तक पान करते हैं। इस तरह से हम लोगों की कथा आरंभ हुई। उसमें श्रीमद् भागवत में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर कि दशम स्कंद की लीलाओं का वर्णन नहीं, सुप्त रूप से राधा जी का नाम कहीं जरूर आया है। मैं तो समझता हूं प्रत्येक श्लोक में ही राधा जी के और कृष्ण के जुगल नाम है, जैसे प्रत्येक चौपाई में किसी न किसी रूप में र अ म र उसमें लाग गया आ रा म आकार भी रहेगा राव भी रहेगा किसी न किसी उल्टा फेर सीधा करके देखो कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगा। ऐसे ही चौपाई बनी है वो जरूर बनेगा राम। उसी तरह से श्रीमद् भागवत में ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसमें राधा जी और कृष्ण जी किसी न किसी रूप में है। कोई कहते हैं कि राधा जी का नाम ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ अष्ट या दशम एकादश कहीं है ही नहीं है, तो वो लोग रसिक तो है नहीं, भावुक तो है नहीं, कैसे इस शास्त्र को समझेंगे। उन लोगों के लिए शपथ दिया गया है जो रसिक और भावुक नहीं ये ग्रंथ को मत देखें, विशेष करके दशम स्कंध ना देखें, नहीं तक समाचरित जातु मन सपिहि अनीश्वरा, मन के द्वारा भी न चिंतन करें। क्यों? इसके गूढ़ जो रहस्य उनको मालूम ही नहीं होगा। एक ने कहा तुम्हारा नाम क्या है, किसी का नाम पूछा गया, उसने कहा कोई नाम। अब इसी को कुछ इस दूसरे रूप में कहा जाए, हमारे यहां एक व्यक्ति आए हैं, यहां पर तिलक है, पाठ के जहां पर प्रवचन होता है दो ग्रंथ रखे गए हैं, उनके ठीक बीचों बीच में सामने से बैठते हैं, उनके सामने ठीक प्रदीप जलता रहता है, जाके पहन करके और मन लगा करके वो सुनते हैं। पारसी में उनका बेटा सुरेश एक तरफ है और दूसरी तरफ में उनकी पत्नी क्या नाम मुन्नी देवी नहीं वो बैठी हैं और चारों तरफ में उनके नाती चाती ये सब बैठे। अच्छा बतलाओ तो वो कौन है, क्या नाम है उनका, क्या नाम तुम बतला सकता है, क्या नाम? ऐसा कोई नहीं है जो बतला सकता है। यदि कोई पूछे जैसे आपका नाम क्या है तो राम प्रकाश इनका, और जब इस रूप से कोई पूछे तो दोनों में माधुर्य किसमें है, इसमें माधुर्य, वो तो डायरेक्ट हो गया, इसमें कुछ रसपस। इसी तरह से ये नाम को ऐसे रखा गया है राधा जी का जो सभी ना समझें और सभी बड़े आराम के साथ में समझ जाएं। रास हो रहा था, रास हो रहा था, कृष्ण गोपियों का आकर्षण किया, घरों से आ रही जल्दीबाजी में थी, एक बाय एक ध्वनि हुई बंसी की। अभी चांद पूर्णिमा का अभी पूरब में थोड़ा थोड़ा उठ रहा, किरणें लाल लाल हो रही थी, सारी वृक्षावलिया और वहां का शीश सिंदरी मानो सिंदूरी रंग से एकदम उन्होंने लाल कर दिया। हाथ में अबीर ले लिया और अपनी प्रियसी पूर्व दिशा के मुखमंडल पर उन्होंने लगा लिया। सभी कुछ नदियों में समुद्र में या जलाशयों में उसकी जो सुंदर आभा पड़ी चंद्र की, उगते हुए चंद्र की कैसी रही, लाल लाल। थोड़ी देर के बाद में बंसी वादन किया और सुन करके लाखों लाखों गोपियां दौड़ी, कोई किसी को नहीं देख रहा, अकेले अकेले दौड़ी, होश नहीं। काजल एक लगा रही थी, एक आंख में आधा लगाया बस छोड़ दिया, आधी आंख में काजल लगा दिया, कोई एक आंख में काजल लगाया, किसने उठाया गले में हार देने के लिए, इतने में बंसी बज गई, मन चला गया दूसरी तरफ, उसने कहा क्या करना चाहिए, जल्दी से कमर में पहन ली। कोई जा रही थी, अभी अंचल को यहां नहीं रखा, सिर पर नहीं रखा, बस वो घसीटता हुआ चलने लगा, वो दौड़ करके आगे, किसी ने कमर करधनी उठाई कमर में पहनने के लिए और उसको गले में पहना। इसी तरह से विपर्जय भाव से बेसुध होकर के सभी चली आई। वहां पर आने पर कृष्ण ने उनको बहुत समझाया, अरे अपने पतियों के पास में आया चली जाओ, आप लोगों के लिए स्वागत है, मैं तो ब्रह्मा हूँ ना, कृष्ण हूँ, हमको देखने के लिए आई, पूर्ण चंद्रमा का दृश्य देखने के लिए, वन का दृश्य देखने के लिए, अब घरों में लौट जाओ। वो चुपचाप कुछ बोल नहीं रही, सिर नीचे कर दिया, पैरों के अंगुलियों से मट्टी खोद लग गई। सचमुच में ये ठिठोली कर रहे हैं ना, सचमुच में ये कह रहे हैं, कुछ ठीक नहीं पाए, प्रतीक्षा करेंगे, और कुछ आगे कहें तो कुछ समझें तो उत्तर दें, न देखो घर में लौटो, और नहीं तो तुम्हारे पति तुम्हें खोजने आएंगे और गड़बड़ कर देंगे, जल्दी से चलें। स्त्री का पति यदि धनवान नहीं है, मूर्ख भी है, कोई कुछ कमाऊ नहीं है, लंगड़ा लूला भी है, गरीब भी है, तो भी स्त्री को उचित है अपने पति की सेवा करे, दूसरे पुरुष के पास जाना उचित नहीं है, यह महाअधर्म है, यह स्वर्ग से भी भ्रष्ट करने वाला है और यहां पर भी बदनामी करने वाला है, जीवन को चौपट कर देगा, लौट जाओ। नहीं सुनी, उन्होंने ऐसा उत्तर प्रत्युत्तर किया, अरे आप तो गुरु हैं, गुरु जी की बात मान लेनी चाहिए, हम मानते हैं, ऐसा गुरु किसको मिलेगा जो इतना सुंदर उपदेश देगा, किंतु शास्त्र में ऐसा लिखा है कि गुरु जी की पहले सेवा करो तब भगवान की सेवा करो, तो इसलिए पहले गुरु जी की ही सेवा हो जाए, इसको ग्रहण करें, और यदि गुरु आप सेवा नहीं करते हैं भगवान से आगे और पतियों से आगे तो आपको प्रत्यवाय लगेगा। इस तरह से उनको अपने वचन में बांध दिया। इसके बाद में रास होना आरंभ किया, रास होते होते सभी लोग आनंद के साथ में करने लगे, कृष्ण ने उतने ही रूप बनाए और रूप बनाकर के एक एक गोपी के पास में एक एक कृष्ण हो गए, ऐसी अद्भुत रीति की, दो कृष्ण के बीच में एक गोपी, दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, एक गोपी और एक कृष्ण, अद्भुत निराला दर्शन, तीनों चीज एक साथ में हो गई, दो गोपियां नित्य कर रही हैं बीच में कृष्ण, दो कृष्ण नित्य कर रहे हैं अपने दोनों हाथों को दोनों गोपियों को दिए, एक कृष्ण एक दूसरे के कंधे पर हाथों में हाथ लगा करके नृत्य कर रहे हैं, बड़ी विचित्र बात है, जितनी गोपियां थी। गोपियों ने सोचा आज सब गोपियों को छोड़ करके हम यहां हमारे साथ ही ये नृत्य कर रहे हैं। राधा जी ने कहा अच्छा तुमको मैं नहीं जानती, जब तुम हमारे पास में हो उधर देखती हो तुम के पास में चले जाते हो, सबके पास में जाते हो और कहते हो कि मैं हमारी सबसे बड़ी प्रियतमा तुम ही हो, बस उनको हो गया मान, उनको हो गया सौभाग्य मद। राधा जी ने रास छोड़ दिया और रास से निकल गई, तुम्हारे साथ में नित्य नहीं करती, देखा जी तुम्हारे साथ में नित्य नहीं करती, मैंने ये नहीं बतलाया, नाम नहीं बतलाया। एक गोपी ने कहा मैं इसके साथ में नित्य नहीं करती, और सब गोपियों ने कहा मैं उसके साथ में नहीं करती, उनको सौभाग्य मद हुआ। कृष्ण उसको खोजने के लिए चले और इनको छोड़ दिया, जब देखा अरे हम सबको छोड़ करके जिस गोपी के लिए खोजने के लिए जा रहे हैं वही सबसे श्रेष्ठ होगी, और उसके पास में पहुंच करके उन लोगों ने देखा जैसे उसके कभी केश श्रृंगार कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अनयाराधितो नूनं भगवान हरिश्वर, निश्चित रूप में इसने भगवान की आराधना की है, जिसे हमारे प्रियतम कृष्ण उसी गोपी के साथ में, वो गोपी कौन है, राधा जी, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से प्रथम स्कंद से और दसम स्कंद 11-12 तक जितने भी है एक एक कड़ी में राधा जी और कृष्ण के जरूर किसी न किसी रूप में वो नाम है, किंतु जो रसिक और भावुक जो लोग हैं इसको समझ नहीं पाते हैं, आप लोग इसको समझने की चेष्टा करें। अभी अभी ये प्रसंग आया, उद्धव जी द्वारका से चले, कृष्ण ने आदेश दिया तुम बद्रिकाश्रम में चले जाओ, अब लीला हम संवरण करेंगे, कोई भी नहीं रहेगा, जल्दी से अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आया, अर्जुन कहा अर्जुन हमारी पत्नियों को लेकर के तुम जल्दी से जल्दी राजभवन से निकाल करके हस्तिनापुर में अपने पास में ले जाना, वहां उनकी रक्षा और सेवा करना। अर्जुन गया और उनको निकाला। निकालते ही अभी जब अभी आए थे एकदम निकट ही, इतने में समुद्र ने गर्जन किया और सबको अपने गोदी में ले लिया। द्वारकापुरी की कोई निशानी नहीं रही, एकदम संपूर्ण से डूब गया भीतर में। अर्जुन हाहाकार करने लग गए। आई इधर कृष्ण ने उद्धव को बुला करके उपदेश दिया और कहा कि द्वार वहां जाना, बद्रिकाश्रम में कुछ दिन रहना, इसके बाद में श्रीमद् भागवत को कैसे प्रकाश किया जाएगा ये सब उपदेश दिए उनको। वहां से आते हैं, कृष्ण ने लीला संवरण कर लिया। इसके बाद में कुरु जंगल देश यमुना के किनारे आए, विदुर से भेंट हुई। विदुर से भेंट होने पर जो दो चार श्लोक वहाँ के हैं अभी शुभानंद जी ने सवेरे पाठ किया है, उसमें कृष्ण की बाल्यकाल से लेकर के और द्वारका तक की समस्त लीलाओं का वर्णन किया है। उसमें बड़े सुंदर उसे उसमें पूरा भागवत ही आ गया है, जिसमें उन्होंने कहते 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 प्रेम में अधीर होकर के कहते हैं, आज कृष्ण ने हमें वंचित कर दिया, कृष्ण के बिना हम रह नहीं सकते थे। ओ जिन्होंने ब्रज में जाकर के कैसी बंसी बजाई, राश इत्यादि के द्वारा समस्त ब्रजवासियों को मुग्ध कर दिया, जो द्वारका में आकर के हमको इतना स्नेह दिया, सब लोगों को स्नेह दिया, आज हमें ठग करके चले गए, आज उनके अभाव में हमारी कोई शक्ति नहीं रही। अर्जुन के लिए तो सुना है ना, इन स्त्रियों को लेकर के जब जा रहे थे कुछ ग्वाल वाले लठिया लेकर के आए और उनका वो धनुष ये सब तोड़ फोड़ करके और ऐसे ही उनको गायब जैसे हाँक करके लेकर के चले गए। अर्जुन भी विलाप कर रहे हैं। इस तरह से कृष्ण जितनी शक्ति है कृष्ण की शक्ति है, उन्हीं की शक्ति से, वो शक्ति कौन है, श्रीमती राधिका जी पूर्ण शक्ति है, वही अपनी आंशिक शक्ति से जगत को बचाए दे रहे हैं। इसलिए कृष्ण लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। अंत में विदुर से वार्तालाप